नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। श्री मोदी इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
हमारा पैसा भी देश में ही रहेगा और युवाओं को अनेक रोजगार भी मिलेंगे। साथियों, आज हमारी सरकार की प्राथमिकता देश के नागरिकों की सुविधा है। देश के नागरिक का समय बचे और उसकी जेब पर ज्यादा बोझ भी ना पड़े, ये हमारा लक्ष्य है। मेट्रो और वंदे भारत जैसी आधुनिक रेल सेवाओं का इसी भाव से ही विस्तार किया जा रहा है।
श्री मोदी ने 40 एकड़ में फैले रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण सुविधा केंद्र की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश के विकसित भारत अभियान का नया अध्याय है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि जेवर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश की प्रगति और विकास का प्रतीक बनेगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत संकट का पूरी शक्ति से सामना कर रहा है और तेजी से विकास को जारी रखे हुए है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। दिल्ली जा रही इंडिगो एयरलाइन की एक फ्लाइट ने आज सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक इंजन में खराबी के संदेह में आपातकालीन लैंडिंग की। ये फ्लाइट विशाखापट्टनम से आ रही थी और इसमें 161 यात्री सवार थे। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार सुबह 10:39 पर हवाई अड्डे पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया था। ओडिशा के नयागढ़ जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 4 महिलाओं सहित 5 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 40 से अधिक लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना हनुमान घाटी के निकट ब्रह्मपुर से हरिशंकर जा रही एक निजी पर्यटन बस के सड़क किनारे चट्टान से टकराकर पलटने से हुई। बस में 60 यात्री सवार थे। केरलम, पुदुचेरी और असम में विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को होंगे। मतगणना 4 मई को होगी। निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में जानकारी विधि और न्याय मंत्रालय कल नई दिल्ली में समग्र न्याय तक पहुंच के लिए अभिनव समाधान डिजाइन दिशा योजना की टेलीलॉ पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह परामर्श विभाग के उन निरंतर प्रयासों का हिस्सा है जिनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं के माध्यम से न्याय तक पहुंच को मजबूत करना और विचार विमर्श, नीतिगत संवाद तथा हितधारकों की सहभागिता के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पिछले साल हुए जंजी के विरोध प्रदर्शनों पर हुई कार्यवाही के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्यवाही बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार द्वारा पिछले साल जंजी के विरोध प्रदर्शनों पर जांच आयोग की रिपोर्ट लागू करने के एक दिन बाद हुई है। सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष ओली को काठमांडू में 12 किलोमीटर पूर्व में स्थित भक्तपुर जिले के गुंडरू इलाके से गिरफ्तार किया गया। पश्चिम एशिया में वर्ष 2014 से यमन की राजधानी सना पर नियंत्रण रखने वाले हौसी विद्रोहियों ने आज सुबह इसराइल पर पहली मिसाइल दागी। यमन के संघर्ष में प्रवेश करने से संघर्ष और तेज हो गया है। यह तनाव ईरान और हिजबुल्ला के बीच रात भर हुई भीषण गोलीबारी के बाद बढ़ा है। इस कारण बीरशेबा इसराइल के प्राथमिक परमाणु अनुसंधान केंद्र के आसपास के क्षेत्रों में 3 अलग अलग मौकों पर सायरन बजे। सऊदी अरब के साथ दीर्घकालिक संघर्ष विराम के कारण हौसी विद्रोहियों ने पहले प्रत्यक्ष हमले नहीं किए थे, परंतु अब हौसी विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता ने ईरान को समर्थन देने को कहा है। जवाबी हमलों में इसराइल ने ईरानी परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर संयुक्त मिसाइल और ड्रोन हमला किया। आईपीएल क्रिकेट का 19वां संस्करण आज शाम बेंगलुरु में शुरू होगा। उद्घाटन मैच में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।